ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में विशेष मधुबन की इस तपोभूमि में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, योग सहज लग जाता है। कहते हैं कण कण से तेरी याद आती है, तो मैं समझता हूँ आप सभी कईयों को तो पहली बार ही मधुबन इस भूमि पर रहने का चांस मिला होगा। काफी समय से, जब से शांतिवन बना तब से यहाँ पर ब्राह्मणों के कार्यक्रम कम हो गए। पहले तो बाबा यहीं आते थे और सभी बाबा के बच्चे ओम शांति भवन 94 तक यहाँ ही आते रहे। 94 में फिर नीचे का निर्माण हुआ और 96 से पूरी सीजन ही नीचे चली गई। फिर भी बाबा का ये तपोवन तपस्या स्थल, यहाँ पर बाबा ने श्रेष्ठ चरित्र किए हैं, तपस्या की है, ब्रह्मा बाबा का ये विशेष स्थान रहा है, दादियों का भी रहा है, तो यहाँ आते ही हरेक को अपने आप को परखने की, देखने की, अंदर से जैसे एक लेंस मिल जाता है, हरेक ने अपने आप को देखा होगा। एकांत में जब हम जाते हैं और विशेष जब योग की तपस्या करते हैं तो आत्मा कितनी फ्लॉलेस बनी है, बेदाग बनी है, उसका पता चलता है। देह अभिमान के कारण अनेक प्रकार के दाग इस पर लगते गए, द्वापर से लेकर के कर्मेंद्रियों के अधीन आत्मा हुई और कर्मेंद्रियों की अधीनता के कारण कई कर्म विकर्म पाप कर्म बनते गए और उनका दाग संस्कारों के रूप में आत्मा के ऊपर लगता गया और इतनी दागी बन गई जो बाबा कहते हैं पूरी चादर मैली हो गई, तमो प्रधान आत्मा बन गई। अब उस तमो प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान बनाना, उसको स्वच्छ साफ करना, उसके लिए बहुत अच्छी तपस्या चाहिए, एकांतवास चाहिए। वैसे हीरे में अगर कोई दाग होता है तो उस दाग को खत्म करने के लिए उसको तराशना पड़ता है, घिसना पड़ता है, काटना पड़ता है, लेकिन आत्मा पर जो दाग हैं इसको तो तराश नहीं सकते, काट पीट नहीं सकते। देखा है आप लोगों ने कभी बहुत छोटे छोटे हीरे, बहुत कीमती, बहुत वैल्यूबल होते हैं। एक बार मैं यहाँ पर विशेष गुजरात के अंदर सूरत में हीरों का बहुत बिजनेस चलता है, हीरे को तराशते हैं, साफ करते हैं, तो एक भाई जिसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बाबा का बच्चा था, तो मुझे कहता है चलो आपको हीरों को कैसे हम लोग घिसाई करते हैं, कितनी वैल्यूबल हीरे हैं आपको दिखा के लाते हैं। तो बाबा साकार में जब थे तो जवहरी थे और बाबा को हीरों की परख बहुत थी साकार में, और बाबा के पास एक मैग्नीफाई ग्लास था, उस ग्लास के आगे हीरे को रखने से वो बड़ा दिखाई देता था और उसमें अगर कोई भी कहीं पर भी छोटे से छोटा दाग हो तो उसकी कीमत बाबा तय कर देते थे, इसकी कीमत इतनी है। तो साकार में ब्रह्मा बाबा का ही अपना बिजनेस था लौकिक में। जब बाबा आए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा को हीरे पत्थर लगने लगे। कहा मैं तो सच्चे हीरों के साथ बिजनेस करूंगा, मैं तो सच्चे हीरों को, उनकी कीमत क्या है उसको देखूंगा। तो बाबा ने ये सच्चे हीरों की सभा बनाई है। अब सच्चे हीरे, उनमें कितनी कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी दाग है अगर, तो उसको खुद को खुद ही निकालना है, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। तो जब मैं उसके फैक्ट्री में वहां गया, बहुत कैमरे लगे थे चारों तरफ से, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हीरे जो माताएं शायद नाक में उसमें पहनती हैं, एक एक हीरे की कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ का। फिर कहता है इसकी कीमत हम लोग कैसे तय करते हैं, चलो आपको दिखाते हैं। तो आजकल तो कंप्यूटर युग है, तो उसने कंप्यूटर के आगे उस कैमरे में रखा सामने, और इतनी छोटी सी बिल्कुल एक पॉइंट जैसा हीरा इतना बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। बड़ा किया उसने और फिर बताया कि देखो यहां पर ये छोटा सा दाग है, अब इसको जब तक घिसेंगे नहीं तब तक ये दाग जाएगा नहीं, इसको घिस घिस करके छोटा कर देते हैं, छोटा भी इतना छोटा छोटा। तो हमने कहा कौन पहनता है ऐसा, इतनी महंगी चीज 1 करोड़ 2 करोड़ चाह, कहती इसकी बहुत डिमांड है, विदेशों में जाता है और इस पर बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने उससे एक प्रश्न किया, हमने कहा ये हीरा तो तुमने मुझे दिखाया, लेकिन आत्मा जो इतना सूक्ष्म हीरा है, कभी उसको एकांत में बैठ के देखा है? उसके लिए कोई आपके पास कंप्यूटर है, मैग्नीफाई ग्लास है, उसके लिए तो बहुत अच्छी साफ स्वच्छ बुद्धि चाहिए। अगर जरा भी बुद्धि में कोई भी प्रकार की डिस्टर्बेंस है, कोई भी प्रकार की बातें किसी की भी इस पर नोट हैं, तो हीरे को परख नहीं सकता। अपने आप को भी कहीं नहीं परख पाते कि मेरे अंदर भी कुछ है। कई प्रकार के आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ते जाते हैं। हमें अच्छा संग मिला, अच्छा ब्रह्मा भोजन मिला, अच्छी पढ़ाई मिली, योग का समय मिला, हम सब ने इस प्रकार के अभ्यास किए जो लगता है कि हमारे संस्कार खत्म हो गए। लेकिन कई ऐसे सूक्ष्म संस्कार हैं जिनका पता नहीं चलता। अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में, वो सब बातें जैसे दबी हुई रहती हैं, पता नहीं चलता। जब कोई ऐसा माहौल बनता है, जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो अंदर की जो संस्कार स्वभाव आदतें हैं वो प्रकट हो जाती हैं, अचानक निकल आती हैं। चाहे वो गुस्से के रूप में आती हैं, चाहे आसक्तियों के रूप में आती हैं, चाहे वासनाओं के रूप में, तृष्णाओं के रूप में आती हैं, और अचानक निकलती हैं तो पता नहीं चलता, और फिर कहती हैं मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। बाबा इसलिए हम सबको कहते हैं बच्चे एकांत में बैठो, एकदम अपने आप को देखो, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरा बाबा जो है जैसा है, पहले उसको देखो कितना प्योर, कितना एकदम लाइट माइट संपन्न चमकता हुआ हीरा है, और उसके हम सब बच्चे हैं। बाबा हम सबको अपने समान ऐसा वैल्यूबल हीरा बनाना चाहता है, फ्लॉलेस हीरा। उसके लिए आज के वरदान में यही था कि बच्चे पुरुषार्थ करो लेकिन प्रारब्ध की इच्छा नहीं रखो, इच्छाएं आपके हीरे को दागी बना देंगी। कोई भी प्रकार की कामनाएं इच्छाएं रहती हैं व्यक्ति की, अगर हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो और कुछ नहीं, कम से कम लोग प्रशंसा तो करें। हमने तन मन धन समय बाबा के कार्य में लगाया, सब कुछ सफल किया है, तो एक आंतरिक इच्छा ये रहती है कि कम से कम बड़ों को पता चले, हमें स्टेज पर बुलाया जाए, हमने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना सब कुछ किया है, तो कुछ तो नाम मान सम्मान मिलना ही चाहिए। और ऐसी सूक्ष्म इच्छाएं जो हैं अगर वो पूर्ति हो गई तो ठीक, और नहीं होती है तो खुशी गायब हो जाती, उमंग उत्साह खत्म हो जाता, आगे करने की जो भावनाएं हैं वो भी टूटने लगती कि लोग तो हमें पहचानते ही नहीं है, मैं इतना सब कुछ करता हूं। तो आज बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराई है कि कोई भी पुरुषार्थ करते हो, कोई भी कर्म करते हो, तो वो कर्म के फल की इच्छा नहीं रखो, इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी। ये भी एक बहुत बड़ा दाग है, जो दाग पर दाग लगता जाता है, और बहुत सूक्ष्म रीति से वो इच्छाएं अगर एक पूरी भी होती है तो दो और खड़ी हो जाती हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे एकांत में बैठ करके अपने आप को देखो। मैं आपको आज अपनी दादी जी का एक पुरुषार्थ सुनाता हूँ, क्लासेज में शायद सुना होगा, आजकल ऑनलाइन सुनते हैं आप सभी। कुछ समय दादी जी अपने गहन पुरुषार्थ में लग गई, 2-3 साल तक मैंने देखा, 2005 से 2007 तक सारी कारोबार को जैसे समेट लिया करती थी। हम लोग जब जाते थे कोई काम पूछते थे बोलती थी, उत्तर देती थी, नहीं तो आंख बंद ऐसे बैठी रहती शांति से। तो एक दिन मैं तो पांडव भवन में यहाँ ही रहता था और दादी शांतिवन में थी, अपने क्वार्टर में बैठी थी, तो मैं ऊपर से नीचे गया तो देखा दादी ऐसे बहुत गहरी कोई साइलेंस में आंख बंद करके बैठी हैं। पहले तो सोचा बैठने दो, नहीं छेड़ता हूँ, लेकिन मेरा कुछ जरूरी काम था और कोई भी कार्य दादी से अगर पूछ लेते थे तो करना सहज हो जाता, तो हाँ और ना में जवाब मिल जाता था। तो सोफे पर बैठी थी, बड़े सोफे पर, मैं भी बाजू में जाके बैठ गया। काफी समय तक मैं दादी की तरफ देखता रहा, हमने कहा क्या कर रही है, जरा भी अटेंशन नहीं गया कि कोई मेरे बाजू में आके बैठ गया। काफी समय के बाद मैंने देखा है तो नीचे आ ही नहीं रही है, तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया, हमने कहा दादी दादी ऐसे किया, तो दादी ने ऐसे आंख खोली, बोलो बोलो कुछ काम है, क्या कहना है कुछ। तुमने कहा दादी आप क्या कर रही थी इतना समय, कहाँ थी? तो बोलती बताऊं, कहा दादी बताओ, मैं अपना काम तो भूल गया, दादी से रोरियान होने लगे। तो दादी ने अपना हाथ ऐसे किया, राइट हैंड ऐसे लिया और कहती है मैं आज अपने हीरे को हथेली पर रख करके अपने तीसरे नेत्र से देख रही थी कि अभी भी कोई ऐसा दाग तो नहीं है, और बहुत देर तक मैं अपने हीरे को देखती रही। देखते देखते सामने ऐसे बाबा आ गए, कहते बच्ची क्या देख रही हो, मना अंदर की बाबा से रू रियान उनकी। तो दादी कहती बाबा मैं अपने हीरे को देख रही हूं, अभी तक कोई फ्लो तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है। तो बाबा मुझे कहता है बच्ची ये तो बिल्कुल बेदाग हीरा है, कोई दाग नहीं है। और बड़ी खुशी से जवाब दिया दादी ने, मैं दादी बेदाग हीरा, हाँ बिल्कुल बेदाग, बाबा का सर्टिफिकेट मिला है। और इतना खुश, इतना अंदर से जैसे बिल्कुल तृप्त आत्मा, भरपूर, कुछ नहीं चाहिए, फ्लॉलेस हीरा है। तो मुझे लगा कि अभी ये दादी संपन्न बन रही है, संपूर्णता के पुरुषार्थ में लगी हुई है। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी आप सबने सुना होगा कहानियों में कि एक साल पहले बाबा ने एक संदेशी को बोला कि तुम वतन में ब्रह्मा बाबा को देखती हो, क्योंकि संदेशियां ऊपर भी बाबा को देखती थी, नीचे तो था ही साकार में। तो कहा हाँ बाबा, ऊपर मिलते हैं बाबा हमको, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा। तो बच्ची उसको देख करके आवाज, उसमें और इसमें कितना अंतर है। तो संदेशी गई ट्रांस में, बाबा के सामने ही गई और थोड़ी देर में आई वापस, तो कहने लगी बाबा उसकी जो चमक है ना, वो बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत उसके अंदर लाइट है, इसमें थोड़ी कम है। अच्छा बच्ची ठीक है। उसके बाद जो बाबा ने विशेष पुरुषार्थ किया, आप सबको मालूम होगा बाबा अपनी इस आयु में भी बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, जो शांति स्तंभ है यहाँ पर। बाबा बच्चों के पत्रों को बहुत प्यार से सब पढ़ते थे, कोई आता था उनको गोद लेना, उनको समाचार पूछना, उनको हर प्रकार की पालना भासना देना। बाबा ने धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल एकांतवासी बना लिया, सब बातों को समेटने लगे। जो आज बाबा के विस्तार में, बाबा के आगे कोई बात करो, बाबा सुनते हुए जैसे नहीं सुन रहा है। अच्छा बच्ची क्या कहा, क्या कहा, ऐसे विस्तार को एकदम सार में ले लिया। और जब योग करने लगे तो हिस्ट्री हॉल के अंदर एक घड़ी थी बाबा के सामने, और हिस्ट्री हॉल बना हुआ था, तो घड़ी में एक चिड़िया आती थी, चू चू करती, घंटे बजाती थी। लेकिन बाबा को इतना एकांत अच्छी लगने लगी, बाबा ने कहा बच्ची इस बच्ची को बंद कर दो, इसको निकालो यहां से, और चिड़िया की चू चू की आवाज भी नहीं चाहिए। सवेरे सवेरे उठ करके 3:30-4 बजे, यहां पहाड़ी थी जहां भाई साहब का, निर्भय भाई का ऑफिस है, यहाँ पहाड़ था, चट्टान थी, उस पर आके खड़े होकर के योग की दृष्टि देते, बच्चे घेर लेते थे। बहुत गहरा एकांत का, तपस्या का पुरुषार्थ किया, और एक साल तक अंतर्मुखी बिल्कुल सब बातों से न्यारे प्यारे। मुरली के अंदर जो गीत बजवाते थे, बच्चे बंद करो गीत की आवाज, क्या आवाज में क्यों आते हो, गीत की क्या जरूरत है, ज्ञान मार्ग में गीतों की क्या जरूरत है, गीत बंद करवा दिए। सवेरे सवेरे मुरली के पहले कुछ दादियां बाबा के पास जाती थी, बाबा गुड मॉर्निंग, बच्चे क्यों आवाज में आते हो, अंदर से भी गुड मॉर्निंग हो सकती है ना। आवाज से बिल्कुल बाबा परे हो गए, और परे एकदम तपस्या में लग गए, हर व्यक्त बातों को उन्होंने समाप्त किया, और करीब एक साल तक ऐसा प्रसाद किया। फिर उसी संदेशी को बुलाया, अब जाओ देखो ऊपर और इधर क्या अंतर है। तो वो संदेशी फिर गई कुछ समय पहले, 15-20 दिन पहले ही, और गई तो बेचारी वो देखे ऊपर वाले को नीचे वाले को, ऐसे तो दोनों समान दिखाई दे, तो वो बोली नहीं लेकिन रोने लगी। उसको ये लगा कि अभी ये बाबा चला जाएगा, इसलिए कुछ नहीं बोली। बाबा समझ गए अच्छा बच्ची, अब किसी को कहना नहीं, कुछ बताना नहीं, चुप रहना। और बाबा को पता चल गया कि अब तो आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध फ्लोलेस बन गई है, कोई भी फ्लो नहीं देहमान का है। तो मेन तो देहमान का ही फ्लो है ना, जिस देह में हम रहे हैं इतने समय, इसके साथ पाठ बजा रहे हैं, कोई भी प्रकार की आकर्षण विकर्षण, दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति जो भी है, अचानक निकल आती है, देह पर दृष्टि चली जाती है, कभी कुछ किया मैं आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं आ जाता है। सबसे बड़ी मैल तो मैं की ही है ना, मैं किया मेरे की। बाबा ने उस मैं और मेरे को जड़ से समाप्त किया। ये जो तीन बातें बाबा कहते हैं ना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इसका गहरा पुरुषार्थ किया। आत्मा को देखने का अच्छा पाठ, हर मुरली के अंदर बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। 68 की सारी मुरलियां जो चली हैं, ये सब उसी से संबंधित, गीत नहीं है, और बाबा के वो शब्द हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। कोई विरले हैं जो 5%, थोड़े दिन पहले बोले 5% ऐसे मेरे बच्चे हैं जो अपने को ज्योति बिंदु समझ करके मुझे याद करते हैं, ज्योति समझ करके। ऐसा गहरा प्रसाद बाबा ने किया, तब आत्मा फ्लॉलेस बनी। तो हम सब तो चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को देख के कहते हैं कौन बना है, बन जाएंगे, समय है, अलबेलेपन की कई बार लहर होती है, किसने देखा है, कितना समय और है। लेकिन बाबा ने हर समय यही ध्यान दिया। मम्मा का तो एक स्लोगन ही था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, काल और कल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आत्मा को इस शरीर से जाना है, निकलना है, तो उसके पहले ही हम कोई पुरुषार्थ करना है संगम पर, अगला जन्म लेके थोड़ी कर पाएंगे। तो बाबा अपने बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे चेक करते रहो, कहीं भी किसी भी प्रकार का। 5 विकारों का रूप तो बहुत बड़ा है, उसको तो ब्राह्मण बनते ही हम सब जीतने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सूक्ष्म उसके जो रूप हैं वो अंदर अंदर आत्मा को परेशान करते हैं। काम विकार का अंश है तो बहुत वासनाएं अंदर अंदर सताती हैं आत्मा को, युद्ध चलती है, मेहनत लगती है, संस्कार है, अचानक निकलता है, सपनों में आता है, संकल्पों में आता है। अब इस संस्कार को जब तक हमने बहुत दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा के रूप में नहीं लिया, तब तक ये खत्म नहीं होता, पीछा नहीं छोड़ता, पीछे पीछे चलता रहता है। और कोई इस जन्म में अगर ऐसे कर्म हो गए हैं तो उसकी भी स्मृतियां आती रहती, वो भी दाग पर दाग लगाती रहती, इसलिए बहुत महीन चेकिंग है। अब हम कहेंगे हमने 1 साल 2 साल से गुस्सा नहीं किया, बाबा कई बार कहते थे बच्चे जो 6 मास कम से कम गुस्सा नहीं किया वो आए और टोली बांटे हैं, साकार में बाबा कहते थे, कोई नहीं उठता था। 6 मास लगातार हमने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, माताओं को कहते थे तुमने 6 मास तक अगर रोया नहीं, आंसू नहीं बहाए तो आओ टोली बांटो, अभी चेक करना पड़ेगा ना। और बाबा ऐसे परीक्षा बीच बीच में ले लेते थे, हम भी कभी चेक करें, हम बाबा के बच्चे जब से बने, इन सूक्ष्म संस्कारों पर मेरी विजय हुई है, जो ऐसे विकार जैसे हम कहते हैं हमको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कभी चिड़चिड़ेपन में, कभी जोश में, अंदर अंदर, बाहर से नहीं बोलते, अंदर लाल पीले हो जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड खराब हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है, चेहरा बदल जाता है, रूप तो है गुस्से का ही है ना, भले हम बाहर से कुवचन नहीं बोल रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं, लेकिन चुप्पी में भी कई बार अंदर अंदर आत्मा बहुत डिस्टर्ब होती है। वो डिस्टर्बेंस अगर हो रही है तो अभी अंश तो है, वंश नहीं तो अंश तो है। अब लोभ वृत्ति देखो, आसक्तियां कितनी हैं, चाहिए कितना, कहते हैं जिंदगी का भरोसा 4 दिन का नहीं और सामान 40 साल का बराबर है, इकट्ठा करता रहता व्यक्ति, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कई बार मैं किसी के घरों में जाता हूँ, ऐसे अचानक पहुंच जाता हूँ, सेंटर्स पर भी कई ऐसे सेंटर्स देखता हूँ तो मुझे लगता है ये सेंटर या घर नहीं है, तो गोदाम बना हुआ है। जहां गए, जिधर गए, मॉल में गए, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी, जरूरत नहीं है लेकिन आदत है इकट्ठा करने की, संग्रह वृत्ति की। अब ये सब संग्रह वृत्ति, मान लो अगर कोई चीज बहुत संग्रह किया है और आत्मा अचानक चली जाएगी तो कहां बुद्धि जाएगी, जो हमने इकट्ठा किया है, जहां हमारा धन लगा है, जहां हमने मेहनत से पैसा कमा के लगाया है, चाहे वस्तुओं में जाएगी, चाहे साधनों सुविधाओं में जाएगी, कहीं ना कहीं बुद्धि भटक जाएगी। अब ऐसी वृत्तियों को चेक करना, यही तो दाग है, और कौन से दाग है आत्मा के ऊपर, कहीं ना कहीं अटकी हुई है, लटकी हुई है। तो एक क्लास में ने कराया था, हमने काम सताता है, क्रोध जलाता है, लोभ भटकाता है, मोह फंसाता है, और अहंकार तो उल्टा लटकाता है, मैं हूं कुछ। अब इनके बहुत सूक्ष्म रूप हैं, इसको बहुत महीन चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं पता चलता है, कहेंगे नहीं नहीं हम तो पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, हम तो बाबा के हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सूक्ष्म दागों को चेक करो, बेदाग फ्लॉलेस बनो, नहीं तो फेल हो जाओगे। जो भी कमी होगी, जिस प्रकार की कमी होगी, वही पेपर बन करके आएगी। हम कहें हम तो सब बातों में पास हैं, एक ही तो कमी है, एक ही संस्कार है, हो जाएगा अंत में ठीक। और बाबा कहता जो एक को पाल लिया ना तुमने, वही एक परीक्षा आएगी, चाहे मोह के रूप में आएगी, चाहे अहंकार के रूप में आएगी, चाहे लोभ वृत्ति के रूप में आएगी। कईयों की आदत रही, हमारे पास यहाँ कई दादियां ऐसी पुरानी थी, सौगात मिली, नई नई साड़ी मिली, कोई सौगात मिली, सब संभाल संभाल के पेटियों में रखी, पहनी नहीं, दी भी नहीं, पहनी भी नहीं, पुरानी वही कपड़े वही पहन करके फटे हाल ऐसे रहे, और शरीर छूट गया तो ऐसे कैसा सारा सामान मिला। अब ऐसे समय पर अंत समय में याद तो आएगी ना कि हमने ऐसा सब जमा करके रखा था, ये किया ये किया। कईयों की आदत खाने पीने की होती है, एक भाई की आदत थी कुछ अच्छा खाने की, ऑपरेशन हुआ उसको बेहोश किया गया, वो एनेस्थेसिया दे देते हैं, जब होश में आया तो वही चीज मांगना शुरू कर दिया आते ही। तो बाबा कहता है ऐसे ही ऐसा ना हो कि ऐसी कोई भी आदत जो अदालत में ले जाए, माना कहीं ना कहीं फंसा दे, हम सबको बहुत चेक करना चाहिए कैसी सूक्ष्म आदतें संस्कारों के रूप में अंदर बनी हुई हैं, देह मान के कारण ही बनी है। जब हम अच्छी तपस्या करते हैं, एकांतवास मिलता है, तो बाबा कहता है केवल बाबा बाबा नहीं करो, बातें नहीं करो, लेकिन अपने हीरे पर जरूर नजर डालो कि मैं जो हूं जैसा हूं, और बाबा मुझे जो बनाना चाहता है बिल्कुल प्योर शुद्ध एकदम सतो प्रधान, जरा भी कोई भी प्रकार का दाग न रहे, ऐसी फ्लॉलेस स्थिति। योग में बैठोगे तो पता चलेगा, जहां पर भी कोई बंधन है, कोई बोझ है, कोई हिसाब किताब है, बुद्धि वहीं जाएगी। बैठे हैं बाबा की याद में, बैठे अच्छे वातावरण में है, अच्छे माहौल में है, बैठते ही एक मिनट दो मिनट बाबा बाबा करके उस स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करेंगे और रस्सी वहां खींच जाएगी, जहां लगाव होगा, जहां पर कोई झुकाव होगा, कहीं प्रभाव होगा किसी आत्मा का, किसी चीज से विशेष स्नेह होगा, चाहे व्यक्ति से चाहे वस्तु से विशेष स्नेह है, विशेष उसकी इच्छाएं बनी हुई रहती हैं। तो जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो उधर ही बुद्धि चली जाती, खिंच जाती है, चेक करें तो पता चलता है ये कमी है, यही दाग है हमारे अंदर, या कोई से कोई व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं लगते हैं, कोई की वाणी अच्छी नहीं लगती है, कोई का चलना उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है, कोई के कर्म अच्छे नहीं लगते हैं, व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति की भाषा ठीक नहीं है, इसकी चलन ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इस प्रकार की एक भावना बन जाती है। और जब हम योग में बैठते हैं तो वही बुद्धि में घूमने लगता है, वही आता है। इसलिए बहुत अटेंशन देने की बात है। अभी हम सबको अपने सब हिसाब किताब चुक तो करने हैं, वापस चलना है ना, घर जाना है, तो बाबा कहते हैं घर जाने के पहले अगर कोई भी दाग रह गया, कोई भी हिसाब किताब रह गया, तो फिर धर्मराजपुरी में झुकना पड़ेगा और शर्म आएगी, बाबा के बच्चे बाबा के आगे धर्मराज के आगे झुक करके जाए, सजा खा करके जाए। इसलिए क्यों नहीं पहले से ऐसा पुरुषार्थ कर ले, जो ये सब हिसाब किताब जो हमारे पर बने हैं देह मान के कारण, वो सब समाप्त हो जाए। इसलिए तो भट्टी करते हैं, चलो एकांत में, चलो मधुबन में भट्टी करके आते। हम सब कारोबार छोड़ के आए, अपने अपने बिजनेस को, अपने अपने सब बातों को समेट करके बाबा के घर में हम तीन चार दिन के लिए आए, एकांत में ली। अब यहां पर भी बातों का रस, देखने का रस, इधर उधर के रसों में अगर हमारा समय चला जाए तो कब हम अपने आप को देख सकेंगे। इसलिए जब ऐसा समय मिलता ना, अमृत वेले एकदम चले जाओ, बाबा तक पहुंचने की बात मेहनत वाली, उसमें अगर लगती है मेहनत कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं आत्मा एक लाइट हूं, एक ज्योति हूं, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार तो नहीं है अभी तक जो मुझे परेशान करता हो, दूसरों को परेशान करता हो, उसको अच्छा ना लगता हो। चेक करना चाहिए, और बहुत सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो बाबा कहता चेक करो, लेकिन दिल शिकस्त नहीं हो जाना। ये दिल शिकस्त होने की बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कोई हार्ट की बीमारी किसी को हो जाती है, दिल की हार्ट की, तो वो बीमारी क्या करती है, नसों का जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है, वो रुकने लगता है, ब्लॉकेज हो जाती है। ऐसे ही अगर आत्मा के अंदर दिल से कष्ट होने का संस्कार है, निराश हो गए, उदास हो गए, अंदर अंदर मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मेरा ये संस्कार है, मेरा ये चेक किया और चेक करने के बाद उसको सोच सोच करके मैं तो बहुत पीछे हूं, मेरे को तो ये संस्कार बहुत परेशान करता, उमंग गुस्सा खत्म हो गया, पुरुषार्थ जो एकदम जंप देने वाला होना चाहिए उसकी बजाय ब्लॉकेज हो गई। बाबा कहता है दिल शिकस्त की बीमारी है, इससे बचना। इसलिए चेक जरूर करो, लेकिन चेक करने के साथ साथ संकल्प करो कि इसे चेंज करना है। दृढ़ता का संकल्प लेकर के उसको हमने समाप्त करना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार कोई व्रत लेना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। भले बाबा भोजन के लिए कहता है अरे जीव घात क्यों करते हो उपवास करके आज खान मुरली में, ये नहीं करना। लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे अगर कोई भी अनुभव नहीं होता, कोई भी ऐसा संस्कार है उसको खत्म करने के लिए अच्छी तपस्या करो, संकल्प करो, जब तक कि अनुभव नहीं होगा तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा, बैठ जाओ बाबा के आगे, अपने आप धीरे धीरे वो समाप्त होगा। नहीं तो इतनी जल्दी इतने समय के संस्कार जो पक्के हो गए हैं, जड़ में चले गए हैं, उनको निकालना मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं एकांत में बैठो, अपने स्वरूप को देखो जरूर, मैं जो हूं जैसा हूं बिल्कुल प्योर शुद्ध वैसा ही हूं, या अभी तक भी कोई ना कोई ईर्ष्या के, नफरत के, द्वेष के, बदला लेने के, चिड़चिड़ेपन के, जोश के, आवेश के, तृष्णाओं के, कई प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों को मुझे खत्म करना है, प्योर हीरा बनना है, वैल्यूबल हीरा बनना है, ऐसा संकल्प लेकर के तपस्या करो। उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। आज देखो जितने महान पुरुष हुए हैं, कुछ न कुछ उन्होंने त्याग किया है, तपस्या की है, तब वो महानता प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध की कहानी सुन लो, वाल्मीकि की कहानी सुन लो, पढ़ लो, ये सब बहुत कड़े संस्कार वाली आत्मा है। पहले वाल्मीकि की कहानी में वो तो डाकू थे, लेकिन जब उनको महसूस कराया किसी ने कि ये क्या कर रहे हो, इसकी सजा क्या होगी, कभी पूछा है, सोचा है, जब उसको महसूस हो गया हाँ ये तो गलत हो रहा है मेरे से, तो क्या करना चाहिए, बोला तुम तपस्या कर। और कहते उसने ऐसी तपस्या की जो दीमक ने उसके चारों ओर शरीर के घर बना लिए छोटे छोटे, तब भगवान प्रसन्न होकर कहते अच्छा मांग वरदान क्या चाहिए, उसका नाम पड़ गया वाल्मीकि, बाल बने हुए थे ना घर के शरीर के ऊपर। और फिर उसको इतनी अच्छी सिद्धि प्राप्त हुई, बुद्धि प्राप्त हुई, जो उसने इतनी अच्छी रामायण की रचना कर डाली। तुलसीदास जी का भी है, तो जितने भी महान संत पुरुष हुए हैं उन सब ने अगर परिवर्तन उनमें आया, उनके संस्कार अगर परिवर्तित हुए, तो उसके पीछे उनकी तपस्या थी, उस तपस्या के आधार से उन्होंने अपने संस्कारों को समाप्त कर लिया। हम सब एक सहज योगी कह करके समझते हैं हाँ सहज योग है, उठे तो उठे, बैठे तो, आजकल लॉकडाउन में क्या किया लोगों ने, मैं रोज क्लास कराता था दो चार जगह लॉकडाउन में, लोग बिस्तर पर बैठे बैठे क्लास सुन रहे हैं, ना नहाया है ना धोया, ऐसे बैठे हैं वही ड्रेस में बिस्तर पर बैठे, अभी घर में बैठे हुए आराम से सुन रहे हैं। हाँ हम दीदी मुरली सुनते हैं रोज, हम क्लास भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ रही, अगर हम स्वच्छ होके पवित्र होकर के नहा धो करके अलग से एकांत में बैठ के क्लास नहीं करते, योग नहीं करते, भले कोई कारण बने जो बाबा ने कहा अच्छा घर में बैठ करके देखो, अब घर में बैठ करके कितना अलबेले हुए, कोई कोई तो बहुत अलर्ट हो गए, कोई ने बहुत अच्छी स्थिति भी बनाई, लेकिन कोई कोई एकदम सुस्त हो गया, अभी भी क्लास नहीं आते। हम तो घर में सुन लेते हैं, दीदी हम तो मधुबन की मुरली सुनते हैं, हम तो कहीं की भी सुन लो, आज तो 50 मुरलियां चल रही हैं यूट्यूब पर, सबकी मुरलियां जिसकी लगा दो आ जाएगी। तो ये अलबेलापन आ गया। ये तीन चीजें जो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की बहुत बड़ी शत्रु हैं, एक आलस्य है। जब बैठेंगे योग में 5 मिनट बैठेंगे, झुटका खाना शुरू कर देंगे, नमाज पढ़ना, जैसे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। जहां प्राप्तियां हो रही हैं, जहां मिलन हो रहा है, जहां एकदम बाबा से बातें हो रही, वहां नींद कहां से आएगी, वो तो भाग जाएगी, भगवान से मिल रहे हैं। लेकिन योग में, क्लास में, मुरली में बैठते सुस्ती आना, ये भी तो कोई ग्रहचारी होगी ना। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी ग्रहचारी है, इस ग्रहचारी को उतारो, उसके लिए कुछ अंगूठी पहनो 8 रत्नों की। इसलिए ध्यान देना, वो अंगूठी नहीं पहनने लगना, ध्यान देना। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि राजू भाई ने कहा ना अंगूठी पहनो तो अंगूठी पहन लेंगे, वो अंगूठी नहीं है, अष्ट शक्तियों की अंगूठी है। एक बात बाबा, एक बाबा दूसरा न कोई, वो एक नग है 9 रत्न का। तो जब ऐसा संकल्प कर लेते कि बाबा आपने जो पढ़ाया है, जो दिया है, वही चिंतन करूं, उस मस्ती में रहूं, तो उस मस्ती के आधार से नींद भाग जाती है। लेकिन अगर आलस्य है, कहीं तो उठ जाते हैं, नियम पालन करते हैं, और बाबा कभी कभी बहुत रमणीकता से कहते हैं ये नियम पालन करते ना, इनका भी एक मंदिर में मूर्ति है नेमिनाथ की। ऐसे नेमिनाथ नहीं बनना, नियम के अनुसार चलो क्लास कर लिया, योग कर लिया, लेकिन कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, बाबा से मिलन, उनसे रूह रिहान, उनसे वरदान, उनसे शक्तियां मिलनी चाहिए, हमारे में परिवर्तन आना चाहिए। योग का अर्थ क्या है? योग लगा रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, योग लगा रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन संस्कार जैसे के तैसे और भी कड़े होते जा रहे हैं, माना योग यथार्थ नहीं है, समझा नहीं योग को। इसलिए बहुत एकांत में बैठ करके ऐसा संकल्प करो कि सबसे पहले तो आलस्य भाग जाए, अलर्ट होकर के एकदम बाबा में खो जाओ, मगन हो जाओ। दूसरा अलबेलापन, ठीक है बन जाएंगे, हो जाएगा, अभी कौन बने, 8 ही तो पास होने वाले हैं, बाकी मेरा भी तो नंबर कहाँ आएगा। ऐसे ऐसे कमजोर संकल्प लेकर के बाबा की बातों को, बाबा ने एक बार बहुत रमणीकता से कहा मेरे बच्चे मेरी बातों को डनलप का तकिया बना लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। डनलप का तकिया नहीं बनाना, बाबा कहता चेयर रेस चल रही है, अभी भी कोई सीट फिक्स नहीं है, 2 के सिवाय और कोई आउट नहीं है, किसके बाद ये बनेगा, आप रेस करो, कभी भी नंबर आ सकता है। और अगर पास ज्यादा भी हो जाएंगे तो बाबा कहता मैं अनेक लड़ियों की माला बना दूंगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना कि 8 या 108 ही पास होंगे, मेरा नंबर कहाँ आएगा। बाबा कहता लास्ट आने वाला भी फर्स्ट आ सकता है, फर्स्ट जा करके। और तीसरा भी आजकल क्या है, अभी मैं राजस्थान टूर पर गया था 2 दिन पहले, 8:30 बजे क्लास चल रहा है, हमने कहा क्या बात है, पानी नहीं आता है, ये नहीं होता है, बहानेबाजी, बहुत सारी बहानेबाजी होती है, कभी नींद नहीं आती है, कभी पानी नहीं आता है। टाइम आना, टाइम समय है, अब मैं माउंट आबू से गया हूँ, नाम अनाउंस हुआ है, क्लास है, आ जाओ, आ रहे हैं आराम से 8:30 पौने 9। तो बाबा कहता है बहानेबाजी नहीं चलेगी, इस पर ध्यान दो, ये अपना ही घाटा है। तो ये जो तीनों बातें ब्राह्मण जीवन में विघ्न रूप बनी हुई हैं, इस पर हम ध्यान दें और बहुत अच्छी तरह से एकांत प्रिय बन करके एक के अंत में जाने का अभ्यास करें, बाबा के अंत में चले जाओ। बाबा जो है, जैसा प्योर वो है, जिसके संग में जितना समय रहते हैं उसका रंग थोड़ा तो लगेगा। अगर बाबा एवर प्योर है और आप अपनी बुद्धि को वहां तक टिकाते हो, ले जाते हो, तो उनके समान वो संग लगता जाएगा, आत्मा प्योर बनती जाएगी। और जितनी प्योरिटी अंदर अंदर आत्मा की आती जाएगी ना, विचारधाराएं बहुत शुद्ध हो जाएंगी। किसी के प्रति भी नेगेटिव ख्याल क्यों आ रहा है, जबकि बाबा कहता हर आत्मा का इस ड्रामा के अंदर बहुत एक्यूरेट पार्ट है, अपने अपने अनुसार जैसा उसका पद होने वाला है, जो बनने वाला है, उस अनुसार वो जो कुछ कर रहा है बहुत एक्यूरेट कर रहा है। जैसे नाटक के अंदर विलियन के पार्ट्स होते हैं ना, कई अगर वो नहीं हो तो भी उसमें मनोरंजन का अनुभव नहीं होता है, उनका भी पार्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे हमारे संगठन के अंदर भी 2-4 अगर ऐसे होते हैं, उसको हम सोच सोच करके अपना दिमाग भारी करें, अपने को भारी कर लें, उसका ही चिंतन चलता रहे, ये विघ्न है, ये रुकावट है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता, क्या होगा? योग लगेगा। सबसे एक बहुत बड़ी बीमारी और दिखाई देती है, जिसको बाबा कभी कभी कैंसर की बीमारी कहते हैं, दवाई नहीं है कोई भी, वो है बहम की बीमारी। बहम, अनुमान, शक, और वो अगर किसी परिवार के बीच में भी आ जाए तो शांति खत्म। किसी पर भी बहम कर लो, ये ऐसी करती, वो ऐसा करता, ऐसे होता, ऐसा होता। अरे जो कर रहा है वो अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे उसके पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। क्यों, क्या, कैसे में जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे, उसके साथ हमारा हिसाब किताब बनेगा। ये कर्मों की बहुत गहन गति है, कर वो रहा है, सोच मैं रहा हूं। इसलिए आज बाबा ने कहा, अगर इच्छाएं हैं तो स्वच्छता खत्म हो जाएगी, इच्छाएं हैं तो स्वच्छता बना देगी। सोचने लगेंगे वो संकल्प, चलने लगेंगे अंदर अंदर, वो संकल्प परेशान करेंगे, वो नया हिसाब किताब क्रिएट हो जाएगा। कर वो रहा है, सोच मैं रहा हूं, और हो सकता है वो करने वाला अपने आप को कभी महसूस करके परिवर्तन कर ले, और हमने जो देखा सुना और हमको कोई ने कहा, हम उसी को सिर पर ले करके घूम रहे हैं कि वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। बहुत गहरी कर्म फिलासफी है, इसलिए हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। जब इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, उसको कोई करेक्ट नहीं किया जा सकता, हम अपनी बुद्धि को क्यों विचलित करें, क्यों चंचल करें, क्यों क्वेश्चंस में जाते हैं? अगर प्रश्नों में उलझ गए तो उलझन वाला सूत क्या होगा, मुंझा हुआ सूत परेशान करेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे प्रश्नों से बाहर चले जाओ, सब कुछ बहुत अच्छे से अच्छा है, और ब्राह्मण आत्माओं के लिए सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। सिर्फ अपने संकल्पों को बहुत सकारात्मक बनाओ, बहुत अच्छे से अच्छे विचार चले। इस समय कलयुग के अंदर अपनी सेफ्टी के तीन साधन हैं, क्योंकि बहुत चारों तरफ से नेगेटिव वातावरण है, भय का वातावरण है, चिंता का वातावरण है, और ऐसे समय पर दुख के दुनिया में दुख की लहर ना आए, भय की दुनिया में भयभीत आत्मा न हो, चिंता मुक्त बनकर के रहे, उसके लिए विशेष अटेंशन देना। कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा में, हर एक सीन बहुत एक्यूरेट है, बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने का अभ्यास करो। साक्षी माना न्यारे होकर के देखो, न्यारे होकर के देखेंगे तो कभी भी कोई भी सीन आपको डिस्टर्ब नहीं करे, टच नहीं कर सकती। इस आत्मा का ये अपना पार्ट है, ये अपना इसका रोल है, बजाने दो। अगर साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होकर के हर आत्मा के पार्ट को देखेंगे तो अंदर से बहुत हर्षित रहेंगे, प्रश्नों में उलझेंगे नहीं, समय व्यर्थ नहीं जाएगा, आत्मा बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रह सकेगी। नहीं तो प्रश्नों की उलझन ऐसी है जो एकदम खुशी गायब कर देती है, परिवार अच्छा नहीं लगता, मुरली अच्छी नहीं लगती, क्लास अच्छी नहीं लगती, संगठन अच्छा नहीं लगता, और कई जगह पर तो भोग भी अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मा भोजन भी अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं मैं नहीं खाता, बाबा कहता बच्चे संगम युग इतना भाग्यवान युग, कितना भगवान अपने बच्चों की दिल से पालना कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं इतनी ऊंची पालना, ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई, और एक एक बात के लिए श्रेष्ठ मत, बच्चे ऐसे चलो, ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे सब कुछ सिखाया बाबा ने। कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकता इस बात के लिए बाबा ने कोई मत नहीं दी, व्यवहार के लिए नहीं दी, दुकान के लिए नहीं दी, घर के लिए नहीं दी, परिवार के लिए नहीं दी, कोई भी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। बाबा ने एक एक बच्चे को अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या में होने वाले हर कर्म के लिए मत दी है, श्रेष्ठ मत दी, कैसे रहो, कैसे चलो, किस भी स्थिति में रहो, सब कुछ सिखाया है। और जब सब कुछ बता करके फिर भी कहो क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा पेपर आता है, ये होता है, वो होता है, माना आपने पढ़ाई को समझा नहीं है, उसकी गहराई में नहीं गए। इसलिए बाबा की मुरलियों की अच्छी तरह से स्टडी करो। बाबा ने जो कुछ सुनाना था सब कुछ सुना दिया है, अब कुछ नया नहीं रहेगा सुनाने के लिए। 48 साल की अव्यक्त मुरलियां सब प्रकार की शिक्षाओं से भरी हुई हैं। साकार में तो सुनाया ही था, लेकिन एक एक बात की गहराई क्या है, योग की गहराइयां क्या है। मैं एक बार योग के ऊपर किताब बनाने लगा, पूरे 12 मास अपने इस 2021 में 12 मास तक योग के ही पॉइंट्स भेजी है अव्यक्त इशारे के रूप में, पूरे 31 बना करके हर मास की पूरी पॉइंट्स केवल योग की और टोटल अव्यक्त मूल्यों से। इतना तो बाबा ने योग की गहराई पर बताया है। धारणाएं क्या हैं, धारणाएं कैसे होनी चाहिए, गुण क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, सब कुछ बाबा ने विस्तार से बताया है। लेकिन कोई पढ़ने का शौक रखे, इस पढ़ाई से, अच्छे संग से, अच्छे वातावरण से आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाएगी, केवल योग लगाने से नहीं बनेगी। अच्छा संग करो, अच्छी स्टडी करो, जब मिले एकांतवास करो, बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ, तो जो भी फ्लो हैं अंदर अंदर महसूस होंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ध्यान देना, हम सबको बाबा एकदम इस समय फ्लोलेस बनाना चाहता है। किसी भी प्रकार का दाग सूक्ष्म में भी अगर है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे महसूस करके एकांत में बैठ करके अपने आप को देखें, अपने स्वरूप को देखो, लाइट को देखो, पवित्रता की लाइट को देखो। आत्मा जो संपूर्ण पावन थी, भेंट करो, अनादि स्वरूप में परम धाम में थी, फिर आदि स्वरूप में जब आई है सृष्टि पर, प्रकृति आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल प्योर शुद्ध पवित्र है। और उसके बाद धीरे धीरे शरीर के साथ आते आते संग लगा शरीर का, आधा कल्प तक केवल एक दो कलाएं कम हुई, कलाएं कोई चीज खत्म हो गई ऐसा नहीं, लेकिन जो प्योरिटी की स्टेज थी, जो संपूर्णता थी, उसमें माइनस हुआ। द्वापर युग आया, आधी कलाएं कम हो गई, बॉडी कॉन्शियस आ गई। लेकिन और जब धीरे धीरे देह और संबंधों में और तेरे मेरे में आते गए तो इस समय बिल्कुल कलाहीन आत्मा बन गई। ऐसे समय में बाबा मिला और कहता, बच्चे अब सब कलाओं में संपन्न बनना है। तो हम सबको चांस है, गोल्डन चांस है। अभी भी बाबा कहता टू लेट नहीं है, जो भी समय है अच्छी तपस्या करके, महसूस करके अपने आप को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो कभी भी छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त नहीं बनना, कभी भी अहम और बहम में आकर के अनुमान लगा करके ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसे करता वो ऐसे करता अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। जो करेगा वो पाएगा, हमको क्या करना है। नहीं तो बहम की बीमारी कैंसर का रूप ले लेगी, अंदर अंदर घुस जाएगा, लास्ट स्टेज में पता चलेगा और फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए परिवार में किसी के लिए भी ये ऐसा होगा, ये ऐसे करता, ये ऐसे कहता, बाबा कहता तेरा क्या जाता है, जो करता है करने दो, तुम बहम नहीं करो, अनुमान नहीं लगाओ, अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ। नहीं तो कहते हैं इस बीमारी की दवाई तो किसी भी वैद्य के पास नहीं है, ये अनुमान की बीमारी ऐसी है। जो लुकमान हकीम थे ना बहुत बड़े दिल्ली में, उनके पास भी उसकी दवाई नहीं थी। और इससे हमारी खुशी गायब होती है, शक्तियां नष्ट होती है, शांति तो रहती नहीं। घर में भी अगर बच्चे पर, पत्नी पर, बच्ची पर कोई शक कर लो, गई खुशी, गई शांति। रोज झगड़ा होगा, रोज एक दूसरे से मन मुटाव होगा, ठीक है उसका पार्ट है, जो कर रहा है कर लेने दो। अपने आप को महसूस करे, परिवर्तन करे, वो अलग बात है। आप उसको महसूस करा के परिवर्तन करोगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता बच्चे कभी कभी ठोकर भी ठाकुर बना देती है, लगने दो ठोकर उसको एक बार। इसलिए ज्यादा अपनी स्थिति को बिगाड़ो नहीं। अगर कोई गलत कर रहा है, हो रहा है, लग रहा है और आप सोच सोच करके दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो बाबा कहता तुम अपना समय गंवा रहे हो। उसको ठोकर लगेगी, अपने आप ठाकुर बनेगा, सुधरेगा। बिल्कुल हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो, उस आत्मा का यही पार्ट है। उस पार्ट को बजाने दो। अगर आपकी बहुत शुभ भावनाएं हैं तो योग का दान दो, शुभ भावनाएं उसके लिए रखो। सबकॉन्शियस माइंड में जब सोया हुआ हो तो अपनी अच्छी वृत्तियों से सुधर जाए, ये परिवर्तन हो जाए, इसका ये संस्कार खत्म हो जाए। योग का दान दो, बाकी क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो कुल का कलंक है। कई अपशब्द सोच करके बोल करके उसको श्रापित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा श्राप उसको लग जाता, और सुधरने वाला अगर होगा भी तो भी नहीं सुधरेगा। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देना चाहिए, ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो है ही ऐसा, कहां से पैदा हो गया, नहीं होता तो अच्छा था। इस प्रकार के संकल्प पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को नहीं करने हैं। सब अच्छा है, सब अच्छे हो जाएंगे। शुभ भावना तो रखो, आज नहीं तो कल बदलना है ही, हरेक को कहां जाएगा। प्यार से बदले या मार से बदले, भगवान कहता मैं सबको सुधार के ले जाने वाला हूं, ले तो जाएगा ना सबको। इसलिए कभी भी कोई के प्रति अपनी स्थिति सोच के नहीं बिगाड़ो, सोच करके हम बिगाड़ रहे हैं, वैसा चल रहा है, वैसा हो रहा है, वर्णन करेंगे तो ऐसे सुनाएंगे जैसे पूरी कहानी सुना देंगे। बाबा कहता बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, अभी संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। चलते हुए ऐसे ऐसे चल रहे हैं, रोक लो, मोड़ो, सिर्फ रुकने जाना। दो शक्तियां चाहिए, ऊंची चढ़ाई पर अगर कोई गाड़ी को ले जा रहे हो तो केवल ब्रेक नहीं है, ब्रेक जरूरी है, लेकिन ब्रेक के साथ उसका हैंडल ऐसा चाहिए जो मोड़ सको आप। मोड़ोगे तब तो मंजिल पर पहुंचोगे, खड़े कर दिया ब्रेक गाड़ी को, ब्रेक लगा करके, तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे। तो ड्रामा की ढाल, ड्रामा का ज्ञान फुल स्टॉप लगवाता है, लेकिन ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है और बहुत अच्छे से अच्छा है, वो हमें हैंडल देता है कि बच्चे इधर से मोड़ लो, इधर चले जाओ। अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई भी पहाड़ आ जाए सामने तो भी ब्रेक नहीं लगाना, मोड़ करके पार कर देना। ब्राह्मण जीवन में कई परिस्थितियां, कई विघ्न, कई संस्कार, कई हिसाब किताब आएंगे, क्यों आ गया, कहां से आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। बाबा कहता है इसमें उलझो नहीं, आ गया है पहाड़, कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब आया है, आप अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ, पहले ब्रेक लगाओ और फिर मोड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनाना, और जो भी ऐसे सूक्ष्म दाग हैं संकल्प करके बाबा के आगे बैठो, बड़ी अच्छी विधि है, बाबा के आगे ऐसे बैठ जाओ, ये गीत है ना, बाबा तुझे देखता रहो, ऐसे देखते रहो बाबा को। कई बार बाबा का चित्र, बाबा का जो ट्रांसलेट भी होता है ना, वो भी एक दर्पण बन जाता है, और उस दर्पण के आगे अपनी कमियां दिखाई देने लगती है, ये संस्कार, ये संस्कार, ये संस्कार। उसको लिखो कागज पर, लिख डालो सच्चे दिल से, और बाबा को बोलो बाबा ये आप ले लो बस, स्वाहा। अगर शक पड़ता कोई पढ़ना ले, कोई देख न ले, उठाओ कागज को बाबा की भंडारी में आग के सवाल हवाले कर दो, स्वाहा। कोई को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, देखे भी नहीं, लेकिन सच्चाई चाहिए बहुत। अगर सच्चे दिल से लिख करके गहरी महसूसता से, आगे नहीं होगा, आगे नहीं होने देंगे, संकल्प पक्का है, तो वो परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो परिवर्तन नहीं होता। लिख देते हैं, कई लिखते हैं अपनी जीवन कहानी, लेकिन बदलते नहीं, वैसे कैसे चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी गहरी महसूसता नहीं है कि गलत हो रहा है, ये पाप हो रहा है। संगमयुगी ब्राह्मणों के लिए ये कर्म पाप कर्म है, उसको महसूस नहीं करते, और महसूस न करने के कारण परिवर्तन नहीं कर पाते। तो कोई भी ऐसा दाग हो, सूक्ष्म में भी, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, विकारों का, क्रोध का, कोई भी है, आवेश, आवेग, बहुत सारी विस्तार है, उसको दाग को चेक करो, और चेक करके बाबा के आगे बैठ करके कागज पर लिखो, बहुत दिल से बाबा को बोलो बाबा माफ करना, ये मेरी कमियां हैं, आप स्वीकार करो और मुझे इसकी शक्ति दो, ये सदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं कहता हूं बिल्कुल बदल के जाओगे, फिर वो बार बार नहीं मर्ज होगा, नहीं तो कई बार संकल्प करते फिर बार बार आता रहता है। तो सभी बाबा के घर में बिल्कुल फ्लॉलेस बनना, कोई भी परिस्थिति आपको फेल न करे, पास हो जाओ, सेकेंड में उसको क्रॉस कर लो, इसके लिए बहुत अच्छा पुरस्कार चाहिए, ठीक है। समय हुआ है, ओम शांति। बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। दो अभ्यास मैं बता देता हूं। क्या हम सब इस सभा में बाबा का आह्वान कर सकते हैं? सभी अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो, चमकते हुए हीरे को देखो और अव्यक्त वतन में बाप दादा को उसी लाइट माइट स्वरूप में देखते आवाहन करो। बाबा, ये सिंहासन आपका बहुत प्योर है, शुद्ध है, कोई इसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्लो नहीं है। मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, आप मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ, मैं आपकी शक्तियों का अनुभव करूं। परम पवित्र बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा, सर्व गुणों का भंडार, वो मेरे साथ आकर के कंबाइंड हो गया है। और ये त्रिमूर्ति लाइट, एक मैं आत्मा लाइट हूं, एक तरफ मेरा शिव बाबा परम पवित्र लाइट है, एक तरफ ब्रह्मा बाबा वो भी बहुत चमकीला प्योर लाइट है। और इस त्रिमूर्ति लाइट के साथ मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर बैठी हुई हूं, उनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूं, उसी अनुभव में समा जाओ।